Assalamualaikum everybody. Welcome to Baakhabar episode 11. Hopefully, is dafa maine episode ke number mein galti nahi ki hogi. This episode is based on a very complicated, very important topic, jo ke hai tijarat or trade. Aur humne ye episode isliye sambhal kar rakha tha, isliye ye 11th number pe aata hai, kyunki isko samajhne ke liye bahut zaruri hai ki aapke kuch foundational topics covered ho. जैसे कि टैक्सेस, जीडीपी, जीडीपी के क्या मसले रहे हैं, बेरोजगारी, इन सब चीजों का जो जिसको कह सकते हैं कि ये चीज कंबाइन होकर जरूरी है इनको समझना, ताकि आप बेहतर तरीके समझ सकें तिजारत, स्पेशली के पाकिस्तान में क्या चीजें ट्रेड होती हैं या पाकिस्तान जिन चीजों को ट्रेड करता है. अच्छा, तिजारत बहुत इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज अगर आप तिजारत हाई लेवल पर अच्छी, आपकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स दोनों ऑन अ ग्लोबल स्केल यू आर डूइंग वेल, देन व्हाट इट डज इट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट्स इन योर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, योर इंस्टीट्यूशंस, आपके इदारों में, आपके सिस्टम्स में, आपके आवाम की स्किल्स में और आपके नेटवर्क्स में. और इन सब को जब आप बेहतर कर सकते हैं, बेहतर एक्सपोर्ट, बेहतर इम्पोर्ट्स की वॉल्यूम और क्वालिटी बढ़ाकर, तो आप अपनी आवाम की क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रॉस्पेरिटी में इजाफा देख सकेंगे. यही एक ग्लोबल कंसेंसस है इस पे. इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इससे बहुत फर्क पड़ता है आपकी जियो पॉलिटिक्स और फॉरेन रिलेशंस पे. आप जिन ममालिक के साथ ज्यादा ट्रेड करते हैं, अगर आप नोट कर सकें, मे बी इट्स अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल टू डिस्कस, बट अगर इसराइल और फलस्तीन की अगर आप एग्जाम्पल ले लें, जो पास में ये कॉन्फ्लिक्ट पे जब डिस्कशन हुई, तो सबसे पहली चीज जो लोग करना शुरू हो गए, दूसरे ममालिक जो जितना बैकलैश या जितनी स्टेटमेंट्स आ रही थी, द फर्स्ट थिंग दैट दे डिड वाज चेक कि उनके और इजराइल के बीच में ट्रेड कितना है. सो दैट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज दैट डिक्टेट्स फॉरेन पॉलिसी. इंडिया और पाकिस्तान की मिसाल ले लें, तो मार्च अप्रैल में द गवर्नमेंट वॉज कंसिडरिंग कि शुगर, वीट, आई थिंक यस, एंड कॉटन, इन चीजों का पॉसिबली इंडिया के साथ ट्रेड हम लोग खोल कर मंगवा सके वहां से. सो इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस. अ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, अभी वी विल बी डिस्कसिंग दिस लेटर ऑन एज वेल, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रॉड ओवरव्यू, वर्ल्ड बैंक इज प्रिडिक्टेड कि पाकिस्तान के अभी करंट हालात में इफ इट यूटिलाइजेज रिसोर्सेज वेल, तो 88 बिलियन का पोटेंशियल है. For context, Pakistan right now, I think, operates on $22 or $24 billion of exports. So, $66 billion ki export, jo isko aap samajh sakte hain, missing exports hain. To wo jo 66 ye jo missing exports hain, uski wajah se agar aap wo achieve kar sake potential, to you can create about 900,000 jobs, about $2 billion in taxes, and these are things you need to understand and go back and look at other topics. तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. बट हैविंग सेड दैट, आई विल मूव ऑन नाउ टू फैज, हु कैन प्रोबेबली एक्सप्लेन कि अब बजट भी आ चुका है, इसमें हमें ये भी पता है, एंड वी हैव डन एन एपिसोड ऑन द बजट, यू शुड गो बैक एंड हैव अ लुक एट दैट. तो आपको ये पता है कि टैक्स के जो रेवेन्यू का जो टारगेट्स हैं वो आर नाउ आउट इन द ओपन, जिसका एक सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है, या जिसका हिस्सा जो है वो मुख्तलिफ जगहों से आता है. वन ऑफ देम कुड बी कस्टम्स ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट्स. So we to understand that better, कि हम किस position पे खड़े हैं, and do we have that kind of potential, और क्या इसकी अहमियत है. We have Faiz with us. Faiz, over to you.
Thanks, Anand. काफी अच्छा overview था of our previous discussions, और I'm very excited about this episode, क्योंकि इसके लिए जो number crunching वगैरह करनी पड़ी है, for me it was quite revelatory as well. लेकिन आगे जाके उसकी बात करेंगे. आपने tax की बात करी. What I liked about your overview is आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बढ़ाने की बातें साथ में कर रहे थे, राइट? यू वर सेइंग के इम्पोर्ट बढ़े और एक्सपोर्ट बढ़े एटसेट्रा, बट ज्यादातर लोग इस तरह सोचते नहीं है. मोस्ट पीपल थिंक के इम्पोर्ट बहुत बुरी चीज है और यू नो कम करनी चाहिए और एक्सपोर्ट सिर्फ बढ़ानी चाहिए. दोनों चीजें शुड गो हैंड इन हैंड, और इसकी थोड़ी देर में बात करते हैं. सो टैक्सेज ऑन इम्पोर्ट स्पेसिफिकली अगर आपने बात करी, डेवलपिंग कंट्रीज में जनरली यही होता है कि आप उनकी इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है, इट्स हार्ड टू फॉर्मलाइज डॉक्यूमेंट द इनफॉर्मल सेक्टर, तो फिर आसानी से जिस चीज को टैक्स कर सकते हैं वो टैक्स करते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल, इंपोर्ट्स आर मोस्टली फॉर्मल और उनको टैक्स करना आसान है, तो उस पर ड्यूटीज लगा दिए, टैरिफ लगा दिए, और आपके रेवेन्यू से आता रहेगा. सो यू नो, बट ऑब्वियसली अराउंड द वर्ल्ड व्हाट्स बीन हैपनिंग इज पीपल हैव बीन रियलाइजिंग कि ट्रेड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. right? Overall product, global productivity will increase with increased trade. तो इसलिए सब अपने टैरिफ बैरियर्स कम कर रहे हैं. पाकिस्तान ने भी काफी हद तक कम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट इसको अप्लाई टैरिफ्स जो है पाकिस्तान के कोई 12-13% आते हैं. मैं सिंपल एवरेज की बात कर रहा हूँ. वियतनाम, विच आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट अ लॉट टुडे, इज अराउंड 5-6%. तो आधे उनके टैरिफ्स हैं कंपेयर टू पाकिस्तान. और इसलिए यू विल सी के वियतनाम के अगर हम स्टोरी देखना शुरू करें, आई थिंक इन द 90s उनकी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स दोनों पाकिस्तान से कम होती थी, राइट? अब जाके अगर आप देखेंगे वियतनाम ने छतें फाड़ चुकी हैं. इफ आर एक्सपोर्ट टू जीडीपी इज अराउंड 10%, वियतनाम की इज क्लोज टू 100%, आई थिंक ऑलमोस्ट ओवर 100%. और आप अगर हम चार्ट इसमें लगाएंगे लेकिन उस पर देखेंगे तो बिल्कुल इन लाइन उनकी इम्पोर्ट्स भी इंक्रीज हुई है. बिकॉज एंड दैट्स वॉट वी नीड टू फोकस ऑन, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ our understanding of trade, कि दोनों import और export साथ में हाथ में हाथ डाल के चलेंगी. आप import क्या करते हैं और आप export in turn क्या करते हैं, that's what matters. और आज के episode में I think इस पे हमें focus करना चाहिए. Research has shown that,
that's a great one thing I would want to interrupt you on, Faiz, is कि you're right कि अभी इस episode को that specially इस पे रखना चाहिए कि आप किन-किन लोगों से export कर किन-किन लोगों से trade करते हैं और क्या-क्या चीजों पे trade करते हैं. Just want to stop you there because the notion के ये जो import है this is the bad guy and export है this is the good guy, ये हमेशा होता है. ये मेरे साथ भी problem था आज से 5-6 साल पहले. मैंने देखना था कि imports में कितनी कमी आई और exports में कितनी ऊपर आई, बस इसी से मेरा ताल्लुक होता था. I think one of the reasons why that happens is because we do not understand कि जो जो जिसको कहते हैं हम कैटेगरीज, इकोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ ट्रेड्स हैं, कि इंपोर्ट्स के अंदर और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी स्पेशली देर आर कैटेगरीज जिसमें आप बोल सकते हैं अगर इसमें हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हो रहा है तो हाँ हम कह सकते हैं कि इतना अच्छा नहीं है. सो इसको कुड यू एक्सप्लेन व्हाट दोस कैटेगरीज आर?
नो 100%, पर थोड़े से मैं अगर वियतनाम वाले फैक्ट्स कर दूं बिफोर गिविंग यू दिस एक्सप्लेनेशन. तो वियतनाम के अगर हम 91 से देखें उनकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई है कोई 100x, देखिए 100 गुना उनकी वियतनाम की एक्सपोर्ट्स बढ़ चुकी हैं और इंपोर्ट्स भी तकरीबन इतनी ही उससे बढ़ी है, थोड़े से कम. पाकिस्तान का एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट्स बढ़ी है कोई 3.5x, सो 3.5 गुना बढ़ी है और इंपोर्ट्स बढ़ी है 7 गुना, राइट? अब ये दिस इज वेयर द कैटेगरीज बिकम रेलिवेंट कि हम पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करता है और वियतनाम क्या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करता है, बिकॉज और इतनी बड़ा डिफरेंस कैसे आया दोनों ममालिक में. बांग्लादेश जिसकी हमने बहुत बातें करी हैं उनमें, उसमें भी और पाकिस्तान में काफी फर्क है. ऑब्वियसली बांग्लादेश वियतनाम वाले लेवल पे नहीं पहुंचा, लेकिन उनकी भी एक्सपोर्ट जो है कोई 22 गुना बढ़ी है और इम्पोर्ट कोई 17 गुना बढ़ी है लगभग अराउंड द नंबर्स. लेकिन वियतनाम पे फोकस करते हैं बिकॉज आई थिंक एंड स्टेट सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को कहाँ तक पहुंचना चाहिए. तो मैं जैसे बात कर रहे थे कि रिसर्च बोलती है अगर आप कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो और उसकी वजह से आपका यू नो तजारती खसारा बन रहा हो, दैट्स फाइन क्योंकि इन द लॉन्ग रन आपका सरप्लस होगा. अब मैं ऐसी वर्ड्स बोल रहा हूँ लोगों को समझ में आए ना आए, बट चार कैटेगरीज होती हैं इकोनॉमिक कैटेगरीज जैसे आपने मेंशन करा. एक बहुत बेसिक हुआ रॉ मटेरियल, कि मुझे इंपोर्ट करना है रॉ मटेरियल to develop something locally और फिर उसको मैं export कर दूँ, ठीक है? Take like cotton yarn for example. फिर आता है अगला स्टेज इंटरमीडिएट गुड्स का, कि मैं आधी खत्म फिनिश गुड जैसे गाड़ियां हमारी आधी खत्म हुई भी आती हैं फिर इधर असेंबल हो जाती हैं फॉर एग्जाम्पल, वो वाली कैटेगरी होती है. उसके बाद होती है फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स हो सकते हैं कैपिटल गुड्स जो कि मशीनरी हो गई, यू नो प्लांट पूरे पूरे इंपोर्ट हो जाते हैं, हैवी मशीनरी हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें वो कैपिटल गुड्स में आएगा कि वो आप यूज करेंगे. यू विल स्पेंड मनी ऑन कैपिटल गुड्स फॉर फ्यूचर इनकम. और आखिरी होता है कंज्यूमर फिनिश गुड्स विच इज बेसिकली जो पाकिस्तान सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, पेट्रोल फॉर एग्जाम्पल आपने एंड में आप कंज्यूम करते हो, सो इट्स अ कंज्यूमेबल जो आप इंपोर्ट करते हो. तो ये चार कैटेगरीज होती हैं ऑल द वे फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स. तो पाकिस्तान का अगर आप ब्रेकअप देखना शुरू करें यू विल सी कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ज्यादातर कंज्यूमर गुड्स करते हैं, राइट? हम इंपोर्ट एज पीपल प्रॉब्ली नो फ्यूल हमारी बिगेस्ट इंपोर्ट है, लेकिन उसके साथ हम एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो हम टेक्सटाइल फॉर एग्जाम्पल शर्टें टावल्स एक्सपोर्ट करते हैं. वी आर नॉट रियली नोन फॉर एक्सपोर्टिंग सेल फोन फॉर एग्जाम्पल, right? Vietnam, on the other hand, is known for exporting all of these electronics. Sare inki Vietnamese companies ka example dekh le, and how they've gone towards high technology. To wo export capital goods karte hain zyadatar, but wo import bhi zyada capital goods karte hain, right? So because they know ke hame future investment ke liye abhi cheezein, is things that we probably can't produce, they need to import and then export accordingly. So dono cheezon mein wo capital goods ke mahir bane hue, theek hai? Unki next level bhi aati hai to intermediate goods ke aati hai. So aadhi khatam hui bhi cheezein, as I just mentioned. Or consumer, I think, is a short, small proportion of their imports and in general, or raw materials bhi kami hai. So basically, Pakistan ko thoda bahut is tarah sochna chahiye ki agar imports badh bhi rahi hain, aur ye mere saath bahut aata hai. I post on a monthly basis when trade data comes out. To usme jab main kabhi kabhar mention karta hu, okay, yeah, you know, automobiles mein, for example, instead of full automobiles, hum import karna shuru kar rahe hain, completely knocked down, CKD kehlati hain ye gaadiyan. That's a good thing. Uspe log bolte hain, how can increased imports be a good thing? What I'm trying to explain it, ke agar hum aadhi khatam hui bhi cheez import kar rahe hain, intermediate good improve import kar rahe hain, aur usme locally value add kar rahe hain, agar hum udhar for example idhar manufacturing shuru kar dein, that's a good thing because hamari yahan jobs create ho rahi hain, hamari yahan productivity improve ho rahi hai, etc. So that's the basic logic of these economic categories. So not all imports are bad, some are obviously bad, and we can talk about that in a little while. But I think Pakistan in general can learn a lot from the Vietnam example. Obviously, I'm not saying aap exactly replicate kar sakenge jo sare East Asian miracles the. I think the time has gone now. But thoda bahut is tarah sochna chahiye ki agar hum imports badhani hai to kis kisam se ki imports badhani hai.
Good. I mean, agar aap Vietnam ki example bhi nahi le, exports ki example le, I think Vietnam stands at 300 billion or something for exports. Bangladesh still is at 47, 48 billion. So, Bangladesh ki example, to hum carry forward kar chuke from since episode 1. Because 91 mein Faiz ne comparison Pakistan ka Bangladesh se start kiya tha. Aur phir 2020 tak ya 2018 tak hum isko khench ke laye the. To aap understand kar sakte hain ki similar trajectory, similar situation se utha kar, what the progress has been and what they've done. So we'll discuss that later on as well. But ek ye to ho gaye what you would call categories of trade. Theek hai, capital goods wagaira ho gayi, intermediate goods ho gayi. Phir aa jaate hain ki jo Pakistan mein the sectors of trade jo hain, what sectors of trade are is Pakistan engaged in?
Again, I don't think exports mein kisi ke liye shock nahi hoga ke textile is a major export, over 50%, ye koi 60% ke kareeb hota tha. I think ab thoda gir ke ab thoda sa diversify ho gaya hamara export mix, lekin generally our export mix is not very diversified. Over 50% is textile, theek hai? Within textile as well, hum thodi der mein baat karenge, jo highest value products hai wo hum itne zyada export nahi karte. Agar to textile le le koi 12-13 billion ke kareeb aapki exports hoti hai, goods export. Uske baad vegetable products aa jate hain, jisme thodi aur bhi cheeze hoti hain, lekin jo classification hoti hai trade ki internationally, usme vegetable products mein aata hai. Phir thode se animal, livestock, wo sab aa jata hai, food stuff aa jata hai. So basically ye the main component is textile, mostly to the US and EU and some other countries. और उसके बाद एग्रीकल्चरल थोड़ी बहुत आ जाती है, लेकिन व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू नोटिस के इसमें कोई इन सबको एग्रीकल्चर वगैरह को आप साथ में लेके मिक्स भी करते हैं, तो फिर भी टेक्सटाइल कोई चार गुना, तीन से चार गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है. सो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोर्ट है हमारी, राइट? अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड ऐसी होती कि यू नो देर वॉज अ सस्टेनेबल वे फॉर टू ग्रो गोइंग फॉरवर्ड, आई वुड बी रिलेटिवली हैप्पी. लेकिन मसला ये है कि पूरी दुनिया जो है ना, it's moving towards man-made fibers, right? Lekin Pakistan mein abhi tak cotton ka charcha lagta hai, right? And Pakistani cotton is a bit unique. So I'm not saying ke isme hum excel nahi kar sakte, but what's interesting to see is ke US data agar aap uthaye, aur US ke top 10 importers jo hain jisme Pakistan bhi hai textile ka, to aap unke mixes ko agar compare kare aur dekhe ke cotton ka mix kitna hai aur wool ka mix kitna hai aur man made fiber ka mix kitna hai, to Pakistan ka mix dekhenge usme or less than 10% is man-made fibers. I think I don't want to compare to China, but China made 70% man-made fiber mix, and China is the largest exporter to the US in terms of textile. Vietnam, jiski humne abhi baat kari, that's also I think over 50% is man-made fiber for them. India and Bangladesh are a bit like us in terms of cotton, but still way better than us. Kitna wo cotton kare aur kitna wo fiber kare, uska chart laga dete to logon ko andaaza ho jayega ki kitne badi main magnitude ki baat kar raha hu, in terms of even textile exports not being, let's say, the ideal mix. Isme aur bhi masle hain ki hum man-made fiber include nahi hua, duties hain hamari yahan thodi bahut import duties in terms of raw material, but point is ye sari frictions hame hatani padengi if we agar hame textile mein aur chhate maarni hai. This year obviously has been an exception because baaki countries had a more severe COVID lockdown. Pakistan was a bit relatively open, industry chalte rahi, aur humne is saal thoda bahut share gain kiya hai as compared to others. But again, if you start looking at micro data, you will see ke ready-made garments ka jo segment hai jisme humne thoda bahut increase kiya tha, uski ab unit prices kam honi shuru ho gayi hai. What that basically means is ke competition is coming back in. Ke baaki jo, as the rest of the world starts opening up as well, now they have more room. Aur Pakistan agar pehle chand mumalik jaisa tha jo bid kar sakta tha for an order, ab aur mulk bhi kar sakte hain. But that's the story for exports in general. Dusri side hai imports. Aur I think sabse pehli cheez jo sochni ki hai ki hum log sochte hain ki bas fuels import kar rahe hain, but aaj se koi 20 saal pehle Pakistan ki primary imports used to be machinery and electronics. Koi I think 20-22% of the mix was machinery, ab ke actually usse bhi zyada, I think 25-27%. Aur ab se koi 16-18% is machinery, and the largest proportion is fuels. Fuels may be particularly GCC se hum bahut import karte hain. GCC being the UAE, Saudi Arabia, Oman, Kuwait, in se hum fuels aaj tak import karte hain. Agla phir jo hamari ye bhi ab highest category wo machinery ho gayi hai, aur machinery quite obviously comes mostly from China. तो लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर हमारा एंड में, बिकॉज अक्रॉस कैटेगरीज अगर आप देखें तो चाइना और भी चीजें हमें बहुत प्रोवाइड करता है, मेटल्स हो गए, थोड़े बहुत टेक्सटाइल की इंपोर्ट्स हो गई, वो सारी चीजें. तो चाइना इज द लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर ऑफ पाकिस्तान. तो ये बेसिकली आपकी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट मिक्स हो गए. व्हाट आई जस्ट वांट टू इन द एंड फोकस ऑन इज के फ्यूल्स में भी कैटेगरीज होती हैं, राइट? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल और इम्पोर्टिंग मोटर स्पिरिट, विच इज आप जो गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं. क्योंकि अगर हम क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करें वो सस्ता होगा, उसको हम लोकली रिफाइन करें और फिर पेट्रोल के तौर पे या फिर और भी सारी क्रूड ऑयल से और बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं, काफी सारे केमिकल्स निकल सकते हैं, अगर वो करें दैट वुड बी बेटर. बट हमारी लार्जेस्ट लाइन आइटम जो होती है इम्पोर्ट की वो मोटर स्पिरिट की ही होती है, राइट? और अगली क्रूड ऑयल होती है, और ये भी हम मिक्स लगा के दिखा देंगे. यू सी के UAE से हम दोनों क्रूड ऑयल और मोटर स्पिरिट ज्यादातर इम्पोर्ट करते हैं. डीजल भी, हाई स्पीड डीजल भी डायरेक्टली, विच इज ऑल्सो फिनिश गुड, इम्पोर्ट करते हैं. और बिटुमिनस कोल, क्योंकि हमारी कोल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम कोल भी इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका. तो ये फॉर मी लाइक दीज इम्पोर्ट मिक्सेज और एक्सपोर्ट मिक्सेज आर फैसिनेटिंग. और ये पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे पूरी डिटेल पड़ी हुई है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप मोरक्को से कितना फॉस्फेट इंपोर्ट करते हैं, ये तक आपको पता चल जाएगा, क्वांटिटी पता चल जाएगी, प्राइस पता चल जाएगी. सो इफ एनीवन वांट्स टू गो एक्सप्लोर दैट डेटा, उसका भी हम लिंक डाल सकते हैं. फॉर नाउ हम ये थोड़ी सी फैंसी स्लाइडें लगा देंगे कि लोग देख लें कि हमारे हिसाब से इम्पोर्ट मिक्स कैसा है और एक्सपोर्ट मिक्स कैसा है.
अच्छा, बड़े कन्वीनियंटली फैज ने आपको बोल दिया कि आप पीबीएस की वेबसाइट पे चले हैं, आप वहां से निकाल लें, लेकिन मैं आपको बता दूं आप ये एक्सरसाइज जरूर कर दें. लेकिन जब मेरी लास्ट फैज से मुलाकात हुई थी, ये बात हुई थी, उसमें फैज ने यही किया था कि डेटा निकाला पीबीएस से और अपने पास ले आया है, और वो मुझे डेटा उसने दिखाया स्क्रीन पे, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि ये डेटा हजम करना जो है ना बहुत मुश्किल है. ये तो इसने काफी सिंप्लीफाई करके ही क्लम टूगेदर कैटेगरीज, कैटेगरीज की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है. आप जब, खैर, आई विल लेट दैट बी विथ यू because you should be doing this exercise. Pakistan Bureau of Statistics, PBS, की वेबसाइट पे जाकर जो है आप ये सारे डेटा निकाल सकते हैं. देर इज नो डाउट कि डेटा बहुत सारा है वहां और काफी एक्सटेंसिव है, लेकिन डू शेयर योर एक्सपीरियंस कि आपका जो है जो एक्सपीरियंस है, जो आपका तजुर्बा है उसके उसका डेटा हजम करने के लिए वो कैसा रहा है, क्योंकि खासा मुश्किल है. बट अच्छा है कि फैज यू स्टार्टेड ऑफ, आपने इकोनॉमिक कैटेगरी की बात की, बिकॉज पीपल वेरी दैट क्लियर्स अप अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन पीपल्स हेड कि यार ये बुरा है ये अच्छा है क्यों. फिर जो आपने बात की वो बात की सेक्टर्स की जो कि ट्रेड के अंदर होते हैं, एक्सपोर्ट्स की इम्पोर्ट्स की दोनों की. अब जो है ना, जो मेन जो मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आना चाहिए, एक तो ये हो गया कि हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इम्पोर्ट करते हैं, उनकी क्या कैटेगरीज हैं. अब ये हो जाता है कि हम और एंड दिस इज एवरीथिंग जो मैंने शुरू में इतनी लंबी तमीद बांधी थी वो ये था कि जो किन ममालिक के साथ आपके क्या जो जो तजारत है, जो एक्सपोर्ट्स हैं और इम्पोर्ट्स हैं, उसका क्या सूरत हाल है, उसकी क्या स्टैंडिंग है, किन क्या क्या ममालिक हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये चीज बड़ी क्लियर हो जाएगी इससे. सो फैज, इफ यू कुड डू दैट.
या आई थिंक थोड़ा बहुत हमने ये इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स की जब हम बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, उसमें मेंशन कर दिया था मैंने कि कंट्रीज कौन से रेलेवेंट हैं. बट पुटिंग देम साइड बाय साइड आई थिंक इज आल्सो रेवलेटरी के यूएस फॉर एग्जांपल इज आवर बिगेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर. ठीक है, हम कोई चार साढ़े तीन चार बिलियन के करीब यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, मोस्टली टेक्सटाइल. अगेन चाइना को भी हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आधे से कम है चाइना एज कम्पेयर टू यूएस इन टर्म्स ऑफ आवर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट शेयर. तो काफी बड़ा फर्क है यूएस बीइंग आवर प्राइमरी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन. बाकी भी सारे कंट्रीज हैं, मोस्टली ईयू बिकॉज वी हैव अ सर्टेन स्टेटस, प्रिफर्ड स्टेटस कहलाते हैं जिसके हम आई थिंक मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट नेक्स्ट टाइम. बट ईयू, चाइना, यूएस, यूके, यही सारे ममालिक हैं जिसमें हम ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं. Within this, I think what's important to think about is के हर कंट्री के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की, उससे आपको एक नंबर मिलेगा, एक डेफिसिट का नंबर मिलेगा या एक सरप्लस का नंबर मिलेगा. अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इम्पोर्ट कम करते हैं एक कंट्री के साथ, हमारा उधर सरप्लस होगा. अगर हम इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं उस कंट्री से और एक्सपोर्ट उनको कम करते हैं, हमारा डेफिसिट होगा. तो इन सारी अगर हम पूरा मैप बनाए ना इसका, और आई थिंक ये हमारा मैप एक वेबसाइट पे भी, मैक्रो पाकिस्तान की वेबसाइट पे है, सो यू विल सी के दो स्टार्क कंपैरिजन मिलेंगे आपको. एक बहुत हैवी ग्रीन मिलेगा जिसका मतलब बहुत ज्यादा सरप्लस है एक कंट्री के साथ, और दूसरा बहुत हैवी रेड मिलेगा जिसका मतलब कि बहुत हैवी डेफिसिट है उस कंट्री के साथ. सो द ग्रीन विद आवर हाईएस्ट सरप्लस इज विद द यूएस एंड आवर हाईएस्ट डेफिसिट इज विद चाइना. तो बहुत क्लियरली आपको दिखता है कि I think 20% of our surplus, trade surplus, is with the US, or 30% of our entire deficit is with China. So, these two countries बहुत basically माने रखते हैं पाकिस्तान के लिए. And I think it's important to see or and think about कि आपको अपनी geopolitical arrangements किस हिसाब से आगे लेके चलनी चाहिए हैं. ठीक है, चाइना के साथ हमने I think बहुत solid relationship अब बना लिए with CPEC with everything. बट आई थिंक थोड़ा बहुत जो लोगों को सोचना चाहिए वो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में. राइट, द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स इवन बियॉन्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, एफटीए जिसको बोलते हैं. लेकिन अगर हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का सोचें, हमने आई थिंक इन द मिड 2000s चाइना के साथ रिलेशनशिप शुरू की थी और वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, उसके बाद बहुत था कि यू नो पाक चीन दोस्ती विल बी फैंटास्टिक एंड ट्रेड डिड राइज कोई 250% आई थिंक 242% ट्रेड बढ़ गई थी बिटवीन 2007 and 2018. तो बहुत ही अच्छी बात है कि ट्रेड बढ़ गई थी. बट इफ यू सॉ द बैलेंस ऑफ दैट इंक्रीज, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टू चाइना इंक्रीज्ड बाय लेस देन 200%, व्हाइल चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 250%. तो इसका मतलब था कि एक थोड़ी बैलेंस नहीं थी ये एफटीए, बिकॉज वी गॉट द व्हाट्स कॉल्ड द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक. ठीक है, अब बिजनेस पर्सनल इफ यू टॉक टू देम, सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बोलेंगे कि जो आपने जैसी टैब खोल दिया बेसिकली चाइनीज प्रोडक्ट्स का पाकिस्तान में आने का, क्योंकि बहुत ही आसान हो गया उनके लिए टू सेल प्रोडक्ट्स ओवर हियर, व्हाट दैट कॉज्ड इज प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. हमने आई थिंक एक एपिसोड में ये भी बात करी कि पाकिस्तान का सेक्टोरल ब्रेकअप जो है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, उसमें इंडस्ट्री बहुत कम है. Of that one reason, now connecting all the dots together, is ke according to people, ke aapne jab Chinese imports itni aasani se aane di, aur basically what that meant is that local manufacturers could not compete. और इसलिए आपकी deindustrialization शुरू हो गई और manufacturing का proportion to contribution to GDP went down. I think it was pretty clear that it was poorly negotiated, the agreement, which is why up now we have a second FTA, which was signed recently, I think last year or the year before. और अब देखना पड़ेगा कि कैसे ये you know how trade picks up again. But I think generally overall बात करने के लिए कि how do we improve trade, अब थोड़ी सी basic understanding समझ में आ गई कि हम किसको क्या import export करते हैं और क्या import करते हैं, कौन से countries relevant हैं, and I think we can take this conversation forward because of this.
So ये जो conclusion में जो मुझे summary देनी थी वो I think Faiz has done a brilliant job at, कि आपको अब समझ में आ गई at this episode आपको हम we wanted to keep it at कि यार आपको ये समझ में आ जाए कि तिजारत क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या इम्पैक्ट है, किन किन चीज़ों में तिजारत करता है पाकिस्तान, क्या कैटेगरीज हैं, क्या इकोनॉमिक कैटेगरीज, क्या सेक्टर्स हैं और किन किन ममालिक के साथ करता है, राइट. सो ये तो ओवरव्यू हो गया तिजारत का. इससे ज़्यादा फिलहाल एक एपिसोड में डाइवर्ज करना वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव एंड दैट इज बिकॉज ये बड़ा जो है एक्सपेंसिव एक टॉपिक है. What we can get to in our conversation in the coming episode is ke ab Pakistan ka jo potential hai, ye jo missing exports hain, what can be done right. Ye to bada aasan hai kehna ke export diversification honi chahiye, ye hum koi 11 12 13 saal se sun rahe hain, right, but what does that mean, abhi kya banata hai, kya banane ki gunjayish rakhta hai. There's something called the economic complexity of countries, उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है, आप क्या वो गुड्स बना सकते हैं जो कम से कम ममालिक बनाते हैं, क्या हम वो चीजें बना रहे हैं और क्या अपने करीबी नेबर्स तक पहुंचा सकते हैं, विल रिड्यूस. सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन पॉसिबली डिस्कस, बट एंड दिस विल इंक्लूड अ हैवी पार्ट ऑफ आई थिंक व्हाट इज फैज़'s फेवरेट टॉपिक विच इज प्रोडक्टिविटी एंड हाउ दैट लिंक्स बैक टू दिस. तो नेक्स्ट टाइम वील गेट इन टू अ लिटिल मोर अबाउट व्हाट पाकिस्तान like it can be capable of, right?
हम इसमें भी अगर थोड़ा सा mention कर सके, हम वैसे कर सकते हैं क्योंकि हमने capital goods की अभी से mention कर चुके हैं, तो हम जो investment हमने ये भी बात कर चुके हैं कि investment to GDP पाकिस्तान में कम है, तो मैं ये जो capital goods import करने की बात कर रहा हूँ, ये मैं imports की ही बात कर रहा हूँ, in case that wasn't clear earlier. So eventually I am trying to link it back to productivity and saying कि आप और capital goods और intermediate goods अगर import करें instead of more consumer goods, that will help the overall economic prosperity of Pakistan through the productivity channel and the investment channel. So, dono channel improve karte hain.
Right. So, this is made clear ki jo pehle Faiz ne baat ki thi uski aur usne aur explanation de di. But I think next time what we can also get into is things like FDIs. Wo kitna important hai, because Vietnam ki example di, apne cell phones ki example di. So, I think Vietnam was one of the countries jahan Samsung ne pehle apna jab factories set up key, so then it started to build that knowledge base and just in Vietnam became what it is today. So FDIs, productivity, energy costs, all of those things. So we'll keep that to next time. It's going to be very interesting. It's going to be very engaging, the next episode, but it can only be possible if you have generally an overview of Pakistan ki tijarat ka jo silsila hai, wo hai kya, right? So on that note, now that we have two summaries by both people on this show, on that note, see you very soon next time. Allah Hafiz.